निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे परमाद्वैतविज्ञानं कृपयायो ददाति वै सोऽयं गुरुर्गुरुसाक्षात् शिव एव न संशय शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेदीय संहिता भाग के ईशावास्य नामक 40वें अध्याय का विचार गत वर्ष शुरू हुआ था। इस वर्ष इसे हमने कल पूरा किया। 18 मंत्रात्मक ईशावास्योपनिषद संक्षेप में, मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने वाले साधन का स्वरूप स्पष्ट कर देती है। मनुष्य जीवन की सफलता अपने ही वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार से होती है। यह जीव अनादिकाल से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अपने विपरीत स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। जो वह है नहीं उसे ही उसके अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से मैं समझ रहा है। जैसे मंद अंधकार में रस्सी का अज्ञान हो, रस्सी रस्सी के रूप में ज्ञात न हो रही हो, तो और सामने वाले के बुद्धि में सर्प का संस्कार प्रकट हो या दंड का संस्कार प्रकट हो या माला का संस्कार प्रकट हो, तो उस अज्ञात रस्सी को देखने वाले जो लोग हैं उनको, जिसके अंतकरण में उस समय जो संस्कार प्रकट हुआ है उसी रूप में वह रस्सी भासती है। जिसके अंतकरण में सर्प का संस्कार प्रकट हुआ वह रस्सी को सर्प के रूप में देखता है। जिसके अंतकरण में दंड का संस्कार अभिव्यक्त हुआ है वह रस्सी के अज्ञान से रस्सी को रस्सी तो देख नहीं पाएगा, दंड के रूप में देखता है। उसी समय अन्य के अंतकरण में माला का संस्कार उद्भूत है, तो वह रस्सी के अज्ञान से रस्सी को माला के रूप में देखता है। ऐसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण कोई जीव अपने आप को मनुष्य मान रहा है, जिसकी बुद्धि में मनुष्य का संस्कार अभिव्यक्त हुआ वह अपने आप को मनुष्य के रूप में देख रहा है अपने ही वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से। जिसकी बुद्धि में देवता का संस्कार अभिव्यक्त हुआ वह अपने आप को देवता के रूप में देख रहा है, कोई पशु के रूप में देख रहा है, कोई पक्षी के रूप में देख रहा है। ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं वे आत्मा नहीं है, अनात्मा है, लेकिन आत्मा के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जिसका भी संस्कार बुद्धि में अभिव्यक्त होता है उसी को मैं मान लेता हूं। और फिर जिसको मैं मान रहा है उसमें होने वाले जो सुख दुख हैं उसको मान लेता है कि मुझे हो रहा है, क्योंकि शरीर आदि स्वयं बन गया तो शरीर आदि में होने वाली जो भी अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं भी समझता है कि मैं हूं, मेरी है। मैं शिशु हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं देवता हूं, आदि आदि अनेकों यानी जैसा उसके भ्रांति का विषय है, अहम अध्यास का विषय है, वैसा ही अपने आप को मान लेता है और उसके सुख दुखों से प्रभावित होता है। और ये जब तक 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में आत्मभाव रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है वो सशरीर है, क्या मतलब शरीर को ही आत्मा समझ रहा है। सशरीरत्व का अर्थ है शरीर को ही आत्मा समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, इस भ्रांति से युक्त है, भ्रांत है जो। तो उपनिषदों के दृष्टि से देखा जाए तो जो सशरीर है शरीर में आत्मबुद्धि करके रह रहा है और शरीरगत सुख दुखों से बचना चाहता है तो कहते हैं ये असंभव है, उसकी यह अपेक्षा वैसी है अग्नि के पास बैठ करके शीतलता की अपेक्षा करना, बर्फ से गर्मी की अपेक्षा करना, यह अपेक्षा कभी पूर्ण नहीं होने वाली। अग्नि से उष्णता की अपेक्षा तो की जा सकती है, शीतलता की अपेक्षा अग्नि से करोगे वह कभी पूरी नहीं होगी। ऐसे अपने आप को 84 लाख प्रकार के शरीर में से ही कोई न कोई समझ करके सुख दुखों से बचना चाहेंगे तो श्रुति कहती है ये असंभव है। न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोः अपहति अस्ति। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जो सशरीर है मतलब अनात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्माभिमान करके रह रहा है, ये भ्रांति है जिसको कि यही मैं हूं करके, इस भ्रांति से युक्त जो होगा वह सुख दुख से बच नहीं सकता। प्रिया प्रिय का अर्थ है सुख दुख, उसे शरीरगत सुख दुखों से प्रभावित होना ही पड़ेगा। तो फिर सुख दुखों से बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। जो अशरीर है, अशरीर का अर्थ शरीर से रहित नहीं, शरीर में रहता हुआ भी शरीर में जिसका आत्माभिमान नहीं है, जीवित होते हुए भी जो अपने आप को शरीर आदि रूप नहीं समझ रहा है, जिस शरीर में रह रहा है वह शरीर मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है। जैसे इस समय आप अध्यात्म विद्या भवन के तीसरे माला के सत्संग हॉल में बैठे हैं तो ये नहीं समझते कि हम ये सत्संग हॉल है, सत्संग हॉल में हम बैठे हैं। तो सत्संग हॉल में ही आपकी आत्मबुद्धि नहीं है, ऐसे शरीर में रहते हुए भी जिसकी बुद्धि यानी जिसकी अहंता शरीर में नहीं है उसे कहा जाता है अशरीर, यानी जिस शरीर में रह रहा है वह उस शरीर को मैं नहीं समझ रहा है, यानी जिसकी भ्रांति निवृत्त हो गई है, यही शरीर ही मैं हूं इत्याकारक भ्रांति से जो रहित है, कहते हैं उसे शरीर में रहने वाले सुख दुख भी प्रभावित नहीं करते। जैसे कमल पत्र पानी में ही रहता है, पानी में ही उत्पन्न होता है और पानी में ही आजीवन रहता है, लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर सकता। ऐसे ही जो शरीर में रहता हुआ भी शरीर में आत्माभिमान नहीं करता, भ्रांति से रहित है, अपितु आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे ही आत्मा के रूप में अनुभव करता है, तो उस शरीर में रहने पर भी उस शरीर से, शरीर के सुख दुखों से उसकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती। ज्ञान का फल इतना ही है। उपनिषदों से हमें जो आत्मज्ञान प्राप्त होगा वह आपके शरीर को सोने का नहीं बनाएगा। हड़ मांस का जो शरीर इस समय है अज्ञान अवस्था में, वैसा ही हड़ मांस का पुतला ही ज्ञान के बाद भी आपका शरीर रहेगा, लेकिन ज्ञानी में और अज्ञानी के बुद्धि में, ज्ञानी की बुद्धि और अज्ञानी की बुद्धि में बहुत फर्क होता है। अज्ञानी की बुद्धि शरीर के विकारों से विकृत हो जाती है, शरीर में अनुकूल परिस्थिति में होने वाला जो विकार है मन में हर्षात्मक उससे युक्त होती है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में विषाद से भी युक्त होती है। और ज्ञानी की बुद्धि में प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर के सामने उपस्थित जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति से उसकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती, कमल पत्र के तरह हो जाती है। यही तो ज्ञान का फल है। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। इस उपनिषद वाक्य से यही बताया जा रहा है कि जिसे आत्मा का आत्म रूप से अनुभव होता है वह लोक शब्दित शरीर इंद्रिय मन के दुखों से युक्त नहीं होता। न लिप्यते लोक दुखे न, इसमें लोक शब्द का अर्थ है अपना ही शरीर इंद्रिया मन बुद्धि रूप उपाधि अपनी ही, और इस उपाधि के जो दुख है यानी कोई भी धर्म है उस धर्मों से प्रभावित नहीं होता। न लिप्यते ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि बाह्य यानी वह इस उपाधि से अलग है, उपाधि से विविक्त है, उपाधि के साथ मिला हुआ नहीं है, उपाधि में रहता हुआ भी उपाधि में तादात्म्य अभिमान नहीं करता। तो मतलब ज्ञान क्या करता है? आपकी बुद्धि में विलक्षणता लाता है। ज्ञानी की बुद्धि और अज्ञानी की बुद्धि में मात्र विलक्षणता होती है, शरीर तो एक जैसा ही रहेगा। आपके मानस दुखों को ज्ञान निवृत्त कर देगा, जो होने हैं। ये नियम होता है कि जिसकी जहां अहंता है, उपाधि में तो सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलताएं ज्ञानी के भी आएगी प्रारब्ध के अनुसार। ज्ञानी का प्रारब्ध ज्ञानी के उपाधि के सामने अज्ञानी के तरह ही अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जरूर उपस्थित कर देगा, लेकिन ज्ञान ज्ञानी के बुद्धि में जो प्रकट हुआ ज्ञान है, वह ज्ञानी की बुद्धि को उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देगा बुद्धि को। ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि नियम होता है कि जिसकी अहंता जहां है वह उसी शरीर के सुख दुखों से प्रभावित होता है। अज्ञानी की अहंता, आपकी अहंता जिस शरीर में है उस शरीर के सुख दुखों से आप अपने आप को सुखी दुखी मानते हैं, दूसरे शरीर को देख करके भी सुखी या दुखी। उस शरीर में जो सुख या दुख होते हैं तो उसे आप अपना सुख या दुख नहीं मानते, मैं सुखी या दुखी नहीं मानते हैं, क्योंकि उस शरीर में आपकी अहंता नहीं है, वह शरीर आपके अहंता का विषय नहीं है, इसलिए उस शरीरगत धर्मों से आप अपने आप को विशिष्ट नहीं समझते। तो कहते हैं जैसे दूसरे के शरीर में अहंता न होने से हम उस शरीर के सुख दुखों से अप्रभावित रहते हैं, ज्ञानी की अहंता भी वैसी ही अपने शरीर के साथ भी नहीं रहती। ज्ञानी की अहंता का विषय तो ब्रह्म होता है और ब्रह्म में कोई सुख दुख नहीं होता, ब्रह्म सुख दुख से रहित है। ज्ञानी को पूछो आप कौन है तो ज्ञानी की अनुभूति क्या बताएगी कि अहम ब्रह्मास्मि। वो शरीर को नहीं, मैं नहीं समझेगा, जैसे अज्ञानी शरीर को मैं मानता है ऐसे ज्ञानी की अपने स्वरूप के विषय में अनुभूति रहेगी, अहम ब्रह्मास्मि ही तो ज्ञानी है। जिसकी अहंता का अनायास विषय उपनिषद है, जिस ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है वही ब्रह्म बन रहा है, उसे कहा जाता है ज्ञानी। जैसा अज्ञानी का अहंता का विषय अनायास शरीर बनता है, ऐसा अनायास उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म ही जिसकी अहंता का विषय बन रहा है वो है ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। और उस ज्ञान का फल है कि फिर जो जिसको हम ज्ञानी समझ रहे हैं शरीर को उपाधि को, उस शरीर में भी उनका आत्माभिमान नहीं है, यही तो भ्रांति है। और इस भ्रांति को तो ज्ञान मिटाएगा, इसलिए उस शरीर के सुख दुखों से अपने आप को वह वैसे ही दूर रखेंगे, दृष्टा बनेंगे, जैसे दूसरे के सुख दुखों के आप दृष्टा बनते हैं। दूसरे के शरीर में यदि चोट आई है तो ये समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को चोट आई है, मुझे चोट आई है ये नहीं समझते। ऐसे ज्ञानी अपने उपाधि को भी, उसका भी दृष्टा बनता है, अपने मन का भी दृष्टा होता है। तो अपने मन में जो सुख दुख होंगे वो देखेगा, जैसे दूसरा सुखी दुखी है ऐसा ये भी सुखी दुखी हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन मैं सुखी दुखी हूं इसके सुख दुख से, ऐसा ज्ञानी नहीं अनुभव करेगा। यही ज्ञान का फल है। तो इस प्रकार का शरीर में से आत्माभिमान जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक हम सुख दुख से बच नहीं सकते, इसलिए श्रुति कहती है कि अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। शरीर से जो रहित, शरीर में रहते हुए भी शरीर में आत्माभिमान से जो रहित है उसे सुख दुख प्रभावित नहीं करते, और जिसकी शरीर में आत्मबुद्धि है वह सुख दुख से बच नहीं सकता। का मतलब हमारे दुख का हेतु है हमारा अपना भ्रम ही, भ्रम से ही हम सुखी दुखी हो रहे हैं और भ्रम का स्वरूप है अनात्मा शरीर इंद्रिय को मैं मानना। ये नियम होता है कि जो दृश्य है उसे अलग दृष्टा हुआ करता है और गीता कहती है, उपनिषदें भी कहती है कि शरीर आपका दृश्य है, आप इसके दृष्टा हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये जो शरीर है ये तो क्षेत्र है और आप क्षेत्र नहीं, क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। तो जैसे घट को देखने वाला घट नहीं है, घट का ज्ञाता है और उसका ज्ञेय है, दृश्य है घट, ऐसे शरीर आपका दृश्य है, आप शरीर के दृष्टा हैं। और दृष्टा यदि दृश्य को ही अपना स्वरूप समझ ले तो यह दृष्टा की भूल है, भ्रांति है और यही भूल हमसे अनादिकाल से हो रही है कि हम अपने दृश्य को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं। दृष्टा दृश्य को ही अपना स्वरूप समझ करके सुखी दुखी हो रहा है और इस भूल को सुधारना, मनुष्य के इस भूल को सुधारना वेदांत का प्रयोजन है। इसी के लिए वेदांत है, उपनिषद है, जितनी भी उपनिषदें हैं, चाहे अठारह मंत्रात्मक ईशावास्योपनिषद लो या बहुत बड़ा जो इस ईशावास्योपनिषद का व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद, वो देखोगे तो इतनी बड़ी पुस्तक है। तो उसका भी प्रयोजन क्या है? बस आपकी इस भूल को सुधारना। चाहे ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों के माध्यम से और उसमें भी 8 ही मंत्र समझ लो, 7 मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वम ये प्रथम मंत्र और तीसरे मंत्र से 8वें मंत्र तक ये 6 मंत्र, ऐसे 7 मंत्रों के माध्यम से ही आप अपनी इस भूल को सुधार सकते हैं। अनात्मा को हम आत्मा समझ रहे, ये भूल है और इसको सुधारने का उपाय है कि जो आत्मा है उसे ही आत्मा समझ लें और अनात्मा को आत्मा जो समझ रहे ये भूल सुधर जाएगी। भूल सुधारने का उपाय है आत्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना और ये आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने कराने का सामर्थ्य अधिकारी को इन 7 मंत्रों में भी है। इसी के लिए तो यथार्थ ज्ञान का स्वरूप बताया ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में, ईशावास्यम इदं सर्वम यत किंचत जगत्यान जगत। ये कहते हैं कि हम अज्ञान से अपने आप को एक शरीर रूप समझ रहे हैं और बाकी सारा जो जगत है वो अपने से भिन्न समझ रहे हैं, दृश्य समझ रहे उसे और उसका दृष्टा हम बने हैं। तो कहते हैं ये जो जगत आप देख रहे हैं अपने से अलग, वस्तुतः यह इस जगत को देखने वाले आप और आपको दिखने वाला जगत और जगत का होने वाला जो आपको ज्ञान है, इसी को कहा जाता है त्रिपुटी। जगत दृश्य है, उसका ज्ञान दर्शन है और उसको आप देख रहे हैं दृष्टा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो सारा व्यवहार है यही सारा व्यवहार। तो इस जगत में यानी संसार में जो कुछ भी वस्तु है उसे उसके वास्तविक रूप से देखो, आच्छादित करो, ये प्रथम मंत्र बता रहा है कि इस संसार में आपको जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिख रहा है, आपके चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण से, चक्षुरादि इंद्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण से, उपमान प्रमाण से, जितना भी जगत दिख रहा है उसे आप क्या करिए कि ईश्वर रूप से आच्छादित करिए, परमात्मा रूप से आच्छादित करिए, परमात्मा रूप से ढक दीजिए। जैसे अभी इस टेबल पर तीन पुस्तकें दिख रही हैं, ये चश्मे का खोल दिख रहा है, एक पेपर वेट दिख रहा है, माइक दिख रहा है, और इस पर ला करके एक कंबल आप बिछा दो तो उस समय आपको ये सारी वस्तुएं नहीं दिखेगी, लेकिन इन वस्तुओं को आपने जिससे आच्छादित किया है वह इन वस्तुओं का आच्छादक कंबल दिखेगा और बाकी सारी वस्तुएं ढक जाएगी। ऐसे कहते इस समय जगत के अलग अलग नाम रूप को जो हम देख रहे हैं, ये सारा नाम रूप एक परमात्मा रूप से आच्छादित कर दीजिए, परमात्मा से ढक दीजिए। इसे परमात्मा से ढकना है तो परमात्मा जैसे कंबल को तो आपने किसी कपाट में रखा है, वहां से निकाल दिया, यहां ला करके फैला दिया तो ढक दिया। ऐसे परमात्मा को किस कपाट से निकाल करके सारे जगत में बिछा देंगे, सारे जगत को ढक देंगे। तो कहते हैं परमात्मा किसी कपाट में नहीं है, वो तो सर्वत्र ही है, जगत में ही है, कहीं से लाना नहीं है, केवल अपनी बुद्धि को सर्वत्र विद्यमान जो परमात्मा है उस परमात्मा के अभिमुख कर लो। परमात्मा तो पहले से ही है, सब जगह है, अपनी बुद्धि वृत्ति वहां पर नहीं पहुंच रही है, उसे वहां पर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा कि फिर वो परमात्मा ही प्रत्येक वस्तु में दिखेगा और वस्तु नहीं दिखेगी। समझ लो कोई एक व्यक्ति मूर्तिकार है, वह मूर्तियां बनाता है सोने की, उसने मूर्तियां बनाने के लिए सोनों की ईंटें की ईंटें लाई हुई हैं और एक क्विंटल वजन का सोना उसने एक कढ़ाई में गला दिया और गला करके फिर थोड़ा ठंडा हुआ तो मूर्तियों के सांचे में डाल दिया, अलग अलग मूर्तियों के सांचे हैं उसमें डाल दिया और बाद में सांचे से निकाल दिया तो वही सोना अलग 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 मूर्तियों के आकार का भास रहा है, दिख रहा है। तो जितने मूर्तियों के आकार में भास रहा है वो सारा का सारा सोना ही है। मूर्तियां बनने से पहले भी सोना था और अभी जो कोई शिव की मूर्ति दिख रही है, कोई अंबाजी की दिख रही है, कोई विष्णु की दिख रही है, सूर्य की दिख रही है, गणेश जी की दिख रही है, ये जो नाम और रूप है इस नाम रूप को, शिव के आकार को और शिव इस नाम को आप सोने से अलग करके दिखा दो। सोना तो एक किलो मूर्ति, एक किलो सोने से वो मूर्ति बनी है, उस मूर्ति में से एक किलो सोना निकाल लें और फिर शिव ये नाम और शिव का जो आकार है वो बचाए रखें, वो बच सकता है तो बच नहीं सकता हो का मतलब उस समय भी ये जो जगत का नाम और रूप है, जैसे मूर्तियों का नाम और रूप सोने से अलग आप करना चाहो तो नहीं कर सकते हैं।